आकार प्रकार बताकर। तीन लोकों का जो विभाग है उसका भी वर्णन किया। फिर पांच प्रकार के स्थावर सारे लोक में भरे हैं ये बताया। फिर कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पर त्रस जीव भी पाए जाते हैं, उसको त्रस नाड़ी बताया। फिर जीवों के भेद प्रभेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया। और फिर 98 प्रकार के जीव गिना दिए, 85 प्रकार के तिर्यंच, 9 प्रकार के मनुष्य, 2 प्रकार के देव, 2 प्रकार के नारक। कौन से जीव कहाँ कैसे होते हैं सब चर्चा कर ली। पर्याप्तियाँ और प्राणों का भी वर्णन किया। फिर पर्याप्तक या पर्याप्तियों की अपेक्षा तीन भाग कर दिए जीवों के, लब्धि अपर्याप्तक, निर्वृत्त अपर्याप्तक और पर्याप्तक। और फिर जीवों की संख्या बताई, कौन से जीव कितनी मात्रा में इस जगत में पाए जाते हैं। लोक में लोकानुप्रेक्षा चल रही है, तो लोक में जो कुछ है उस सब का चिंतन करना है कि कौन से जीव कितनी मात्रा में होते हैं। तो बादर, पर्याप्तक आदि सब जीवों को लेकर के सबका वर्णन कर दिया। और सम्मूर्छन मनुष्य आदि कहाँ रहते हैं, विकलेंद्री जीव कहाँ रहते हैं, सबका विस्तार के साथ वर्णन करके संदृष्टियाँ भी बताई, कुछ चार्ट्स बना करके दिए। देवताओं का भी वर्णन पूरा हो गया, नारक जीवों का, फिर उनकी उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु कितनी होती है, कौन से जीवों की कितनी आयु होती है, उन सब का भी वर्णन किया। फिर आयु का वर्णन करने के बाद उनके शरीर का आकार प्रकार कितना होता है तो उनका भी वर्णन किया। और फिर इसके आगे अब अन्य मत में जो जीवों की मान्यता है, जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे मत हैं जो जीव को स्वीकार करते हैं, लेकिन थोड़ा मतभेद होने के कारण उनकी मान्यता किसी एक नए की दृष्टि से रुक जाती है, क्योंकि वो उसी को सब कुछ मान लेते हैं। और जैन दर्शन की मान्यता सर्वांगीण जीव का वर्णन करने वाली होती है, जैसे अभी जो वर्णन कर रहे हैं 177 नंबर की गाथा 177। ये एक वैशेषिक नैयायिक मत होता है। तो इनकी मान्यता में क्या, ये लोग सदाशिव, आज वर्तमान युग में सदाशिव मत वाले कहलाते हैं। और इनकी मान्यता ये है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, अथवा एक आत्मा है और फिर उसी की ये सब छाया है। और वो जो आत्मा है जिसकी छाया है वो परमात्मा है, और जो छाया है वो आत्मा है, इस प्रकार से वो मानते हैं। उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे पानी से भरा हुआ बर्तन आप रात को चांदनी में ऊपर रखो तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, इसी प्रकार आप जितने बर्तन रखोगे सब में पड़ेगा। तो चंद्रमा एक है, प्रतिबिंब अनेक है, उसी प्रकार परमात्मा एक है लेकिन उसकी जो छवियां हैं आत्मा वो अनेक है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो यहाँ पर जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसा मानने में कुछ अड़चनें आती हैं, इसलिए ऐसी मान्यता को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। देखिए, सवगौ जदि जीवो सवत्थ वि दुख सुख संपत्ति जाय जिणसा दिठि नियतणुमाणो तदो जीवो। अगर ऐसा माने कि जीव सर्वव्यापी है, माने यहाँ अपने शरीर मात्र तक सीमित नहीं है किंतु जीव सर्वत्र है, सब जगह फैला हुआ है, ऐसा अगर मानते हो तो सर्वत्र भी दुख सुख संपत्ति जायज, सब जगह दुख और सुख की संप्राप्ति हो जाएगी। वो कहीं आग जल रही है और जीव सर्वव्यापी है तो आग जलने से जो गर्माहट का अनुभव है, वहाँ आग जल रही है और यहाँ गर्माहट का अनुभव होना चाहिए जीव को। जीव सर्वगत है, जहाँ ठंडक है तो उस ठंडक का भी अनुभव इसको होना चाहिए। सुख दुख सबकी संप्राप्ति एक साथ एक जीव को एक समय में होनी चाहिए। नशा दिखी ऐसी किसी को भी ऐसी दृष्टि नहीं पैदा हुई कि जिस सब जगह से सुख दुख का अनुभव एक जगह बैठ के करता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसलिए तदो नियतणु माणु जीव, जीव जो होता है अपने शरीर के माणु यानी प्रमाण होता है, एक अपने शरीर से बड़ा भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता। फिर इसके आगे और देखिए, बहुत सुंदर इसमें खुलासे किए हैं। अगर नैयायिक सांख्यादय, नैयायिक और सांख्यादि, अब सांख्य मत भी एक मत है, अर्थांतर भूतेन ज्ञानेन जीवम ज्ञानिनम निगदन्ति तन निषेधमाह। अब नैयायिक और सांख्य मत वाले क्या मानते हैं कि ज्ञान कोई अलग वस्तु है और उस ज्ञान के समागम से आत्मा में ज्ञान होता है। आत्मा स्वतः ज्ञान स्वभावी नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो अब आचार्य उसका जवाब दे रहे हैं, जीवो नाण सहावो जह अग्गि उन्नवो सहावेण अथंतर भूदेन ही नाणेन न सुहवे नाणी। जीव ज्ञान स्वभाव वाला है। आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान बाहर से अंदर प्रवेश करता है और जीव ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान जीव का स्वभाव है। अथंतर भूदेन ही नाणेन, अन्य पदार्थ रूप कोई ज्ञान द्वारा नसो ज्ञानी हवे, कोई वो जीव ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान उसका खुद का स्वभाव है। जह जिस प्रकार सहावेन अग्नि उन्नवो, अग्नि अपने स्वभाव से ही उष्ण होती है, उष्णता कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ती अग्नि के अंदर। अग्नि में जिस प्रकार उष्णता स्वभाव से होती है, उसी प्रकार जीव में ज्ञान भी स्वभाव से होता है। अब वो कम ज़्यादा हो एक अलग बात, लेकिन होता स्वभाव से, बाहर से नहीं आता। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, अथ जीवान सर्वथा जीवात सर्वथा ज्ञानम भिन्नम प्रतिपादयतो नैयायिकान दूषयति। अब जीव से ज्ञान को सर्वथा भिन्न प्रतिपादित करने वाले नैयायिक मत वालों को आचार्य महाराज बताते हैं कि इसमें देखो क्या दोष आता है, दोष बतला रहे हैं कि तुम अगर ये मानोगे कि ज्ञान अलग से आता है और उसके कारण जीव ज्ञानी बनता है, ऐसा तुम मानोगे तो फिर उसमें क्या दिक्कतें आती है वो बता रहे। यदि जीवादो भिन्नम सर्वपयारेण हवदितम नाणम गुणगुणि भावो यतः दूरेण पणसदे दुन्नम। यदि सर्वपयारेण सर्व प्रकार से नाणम तम नाणम जीवादो भिन्नम, वह ज्ञान जीव से भिन्न यानी पृथक हो तो क्या होगा, दुन्नम जीव और ज्ञान यानी ज्ञानी और ज्ञान इन दोनों में गुणगुणी भावो दूरेण पणस्यदे, गुण और गुणी, ज्ञान गुण है और जीव गुणी है, तो गुण और गुणी ऐसा जो संबंध है वो दूरेण पणस्यदे दूर से ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग चीज़ों में गुणगुणी भाव हो ही नहीं सकता। गुणगुणी भाव किस में होता है, कोई गुणी वस्तु हो और उसके अंदर कोई गुण हो तब तो गुणगुणी कहेंगे। अब पड़ोसी के बच्चे ने मेरिट में नंबर प्राप्त कर दिया अच्छा, और फिर ये कहे कि भाई मेरा गुण है वो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि जो पृथक पृथक है उनमें गुणगुणी भाव नष्ट हो जाता है। फिर और देखिए क्या मान्यता है, अथ जीव ज्ञान यो हो गुणगुणी भावेन क्या लिखा भेदम निगदति। अब जीव और ज्ञान में जो भेद है वो गुणगुणी भाव की अपेक्षा से है, सत्ता अलग अलग नहीं है। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना दो बच्चों का, वो एक पड़ोस वाला बच्चा और एक यहाँ वाला बच्चा है, तो उसके मेरिट में आने से इसका गुण नहीं हुआ कुछ भी। उसी प्रकार अगर ज्ञान को आप जीव से पृथक मानते हैं तो वो पृथक ज्ञान जीव का गुण कैसे हो सकता है? यहां कहते हैं कि जीव और ज्ञान में भेद तो है, लेकिन सत्ता में भेद नहीं है, किंतु जीव गुणी है और ज्ञान गुण है, इस प्रकार का भेद हो जाता है। जीव सविनाण सवि गुणी गुण भावेण के रे भेओ जम जान दितम नानम एवं भेओ कहम होदी। जीवस्सवि नाणस्सवि, जीव और ज्ञान इनके बीच गुण गुणी भावेन भेओ की रही, गुण और गुणी इस भाव से भेद किया जाता है। यदि ऐसा भेद न करो तो जम जानदि तम नाणम कहम होदी, जो जानता है वो ज्ञान है, ये कैसे बोलोगे? जो जानता है वो ज्ञान है, ये आप बोल नहीं सकते। अथ ज्ञानम, इसका और स्पष्टीकरण देख लो। जीवस्यापि ज्ञानस्यापि भेद पृथक्त्वं गुण गुणी भावेन क्रियते। जीव का और ज्ञान का जो भेद है, पृथकपना है, वो गुण और गुणी भाव रूप से किया जाता है। ज्ञानम गुण, ज्ञान क्या है? गुण। और आत्मा गुणी, आत्मा गुणी है। ज्ञान जीव स्वभावेन गुण गुणिनो, ज्ञान और जीव स्वभाव की अपेक्षा, ज्ञान नाम का जो जीव स्वभाव है उसकी अपेक्षा गुण गुणिनो कथंचित भेद है। गुण और गुणी इनमें किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से भेद है। भिन्न लक्षणत्वात्, क्योंकि गुणी का लक्षण अलग होता है, गुण का लक्षण अलग होता है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा है। गुण जो होते हैं वो द्रव्य के आश्रित होते हैं, लेकिन गुण निर्गुण होते हैं, यानी गुण में कोई दूसरा गुण नहीं होता। जैसे ज्ञान गुण है, अब ज्ञान गुण में दर्शन गुण नहीं होगा, ज्ञान गुण में सुख नहीं होगा, ज्ञान गुण में वीर्य नहीं होगा, ज्ञान गुण रहेगा, इतना अंतर है। लेकिन गुणी में ये सारे गुण रहेंगे, कितना फर्क पड़ गया। यानी गुणी तो गुणों का भंडार हो सकता है, लेकिन गुण अकेला ही होता है, उसमें अन्य गुण नहीं रह सकते। अथ ज्ञानम पृथ्व्यादि भूत विकारमिति वादिनम चार्वाकम निराकरोति। चार्वाक नाम का एक मत है। चार्वाक मत की ये मान्यता है कि आत्मा परमात्मा कोई चीज नहीं है। ये तो पांच भूतों का संयोग हो गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच भूतों का समागम हो गया, और इनके समागम से एक विशिष्ट कार्य संपन्न हो गया कि चेतना पैदा हो गई। ये पंच भूतों का जब तक मेल नहीं था तब तक कुछ भी नहीं था, बोले जीव था ही नहीं। इसलिए पिछले जन्म की बात करना मूर्खता है, और मर जाने के बाद जब ये शरीर उसमें जल जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा तब अगला जन्म होगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, बोले ये चार्वाक मत है। चार्वाक मत, जैसे भारत में चार्वाक मत के नाम से ये प्रसिद्ध है, लेकिन ये धारणाएं सबके दिमाग में अलग अलग प्रकार से भरी रहती है बिना सिखाए भी, क्योंकि अनादि से जीव संसार में भटक रहे हैं जैन मत के अनुसार, तो सब कुछ सीखा हुआ है, इसको अलग से ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं, सब होशियार है, बिल्कुल एक्सपर्ट है, हर चीज़ सबको मालूम है। तो अन्य मतों में या अन्य देशों में इसकी मान्यता क्या है? चार्वाक मत वालों की मान्यता ही, जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में वो क्या मानते हैं? यावत जीवम सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक मत की कारिका है कि जब तक जिंदा हो तब तक ठाट से जियो, कर्ज लेकर के घी पियो, जब शरीर जलकर खाक हो जाने वाला है तो पुनर्जन्म कहां से होगा, बोले पीत्वा पीत्वा पुनः पुत्वा पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे ऐसे श्लोक हैं उनके यहाँ कि दारू पीना हो तो इतनी पियो कि धरती पर लौटने लगो, और जब फिर होश आए और उठो तो फिर दोबारा पी लो, बोले पुनर्जन्म नहीं होने वाला, ये मौका मिला है। तो इनका कहना क्या, खाओ पियो और मौज करो। ऐसे ही वहाँ पर भी चलता है पश्चिमी संस्कृति में, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये उनका कहना है। तो उसको कहते हैं चार्वाक मत। वो बोलते हैं कि पंचभूतों के समागम से एटम्स मिल गए हैं सब पांच प्रकार के, पृथ्वी जाति के परमाणु अलग, अब ये सब ये मान्यता दूसरे मत की है, लेकिन उन्होंने इसको तो मान लिया कि चलो ये अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन इनके मेल से एक स्फुरण आ जाता है, एक हलचली पैदा हो जाती है, बस वही चेतना है। और वो चेतना जब तक के इनका मेल है तब तक के है, मर जाने के बाद कुछ नहीं है, न पूर्व जन्म था न आगामी जन्म है, अभी जो कुछ मिला है मौका कर लो मौज मस्ती, फिर भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है, जो कुछ करना हो अभी कर लो, मौका है। ये मान्यता उनकी चार्वाक मत वालों की, और इसका कुछ अंश सब में फैल होगा हिंदुस्तान में, जो भी विषय कषायों का समर्थन करते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि अभी मिल रहा है मजा ले लो, बोले छोड़ो मत। तो उनका निराकरण कर रहे हैं आचार्य महाराज, कह रहे हैं कि वो कहता है कि ये पृथ्वी आदि पंचभूतों का विकार है जीव, तो उसका निराकरण कर रहे हैं। नाणम भूय विहारम जो मन्नति सो विभूद गहिदत्थो, गहिदव्वो है, जो मन्नति सो विभूद गहिदव्वो, जीवेण विना नाणम किंकेण विदीसदे कथ। यश चार्वाक ज्ञानम जीव, जो चार्वाक ज्ञान अर्थात जीव को गुण गुणी नोर अभेदात, गुण और गुणी में अभेद होने के कारण ज्ञान अर्थात जीव, कारणे कार्योपचाराच अथवा ज्ञान जो है, ज्ञान और जीव इन कारण में कार्य का उपचार करके, ज्ञान शब्द इन जीवो गृह्यते, ज्ञान शब्द से जीव ग्रहण कर लो, उसको ज्ञान को या जीव को भूत विकारम ज्ञानम पृथिव्यप्तेजो वायु विकारो जीव मन्यते, पृथ्वी जल अग्नि और वायु इनको मिलाने से जो विकार होता है वो जीव है ऐसा मानता है, अंगीकरोति ऐसा अंगीकार करता है। सोपी चार्वाक वो चार्वाक मत वाला, अब आचार्य महाराज कभी कभी कुछ मनोविनोदपूर्ण बात भी कर जाते हैं, जैनाचार्य कभी कभी ऐसी मजाक भरी बात भी करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि सोपी चार्वाक भूत गृहीतव्य भूत ही पिशाचादि भी गृहीतव्य ग्रथिल इत्यर्थ, तो हम समझते हैं कि उसको भूत पिशाच ने पकड़ के रखा है इसलिए वो ऐसी मान्यता को लेकर के बैठा हुआ है, वो कि पंचभूतों से या यहाँ पर चार भूतों के नाम दिए हैं, उनके मेल से चेतना पैदा हो गई, वो जीव उन भूतों का विकार है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो विकार है वो हम समझते हैं कि भूत पिशाचों ने तुम्हें पकड़ के रखा है इसलिए तुम ऐसी बातें बड़बड़ा रहे हो। कथवी कुत्रापि कहीं भी किसी भी स्थान पर केनापि मनुष्यादि जीवन किसी भी मनुष्यादिक ने आत्मना विना ज्ञानम बोधः किं दृश्यते, क्या जीव के बिना ज्ञान को देखा है, जहां जीव होता है वहीं तो ज्ञान होता है। अब पंचभूत तो मरने के बाद भी पूरा शरीर का आकार ज्यों का त्यों बना रहता है, अब कहां चला गया, पंचभूत का विकार होता अगर जीव तो फिर पंचभूत तो अब भी है, अब मरने के बाद क्या हो गया, पंचभूत तो यहां पर है फिर कैसे वो समाप्त हो गया सब खेल। अपि पुनः और भी कहते हैं, अथ सचेतन प्रत्यक्षैक प्रमाणवादिनम जीवा भाववादिनम च चार्वाकम दूषयति। अब चार्वाक मत के और भी कुछ मान्यता है, वो जीव का अभाव मानते हैं, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं, ये जो कुछ भी तुम जिसको जीव बोल रहे हैं वो सब पंचभूतों का या चार भूतों का मिलन होने के कारण उत्पन्न हुआ विकार है, जीव नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है। और दूसरी बात क्या मानते हैं वो, सचेतन प्रत्यक्ष एक प्रमाणवादी, हम सिर्फ एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है जो आंखों के सामने दिखता है वही सच है, बाकी सब झूठ है, ऐसा मानते हैं। तो उसको उसमें क्या दोष है वो बतला रहे हैं, सच्चेण पच्चखम जो जीवम नेव मण दे मूडो सो जीवम नमुनंतो जीवा भावम कहम मुणदि कुणदि। सचेतन प्रत्यक्ष जीव को जो मूढ़ यानी जो अज्ञानी जीव, सचेतन प्रत्यक्ष जीव को न मन्न दे, नेव मन्न दे मानता ही नहीं, तो आचार्य कहते हैं कि जीवम न मुणंतो, जीव को न मानने वाला जीवाभावम कहम कुण दी, वो जीव के अभाव को कैसे सिद्ध कर सकता है। जिस चीज को मान ही नहीं रहा है उसका नाम वो कैसे ले सकता है, जो चीज है ही नहीं उसका नाम क्यों ले रहा है वो। जैसे मान लो कोई चीज बिल्कुल है ही नहीं तो उसकी तो कभी चर्चा भी नहीं होती, लेकिन वो कह रहा है कि वो नहीं है, वो नहीं है क्यों कह रहा है वो, जो चीज उसकी मान्यता में है ही नहीं, जो चीज सर्वथा अभाव रूप है तो उसकी चर्चा कहां से निकल रही है उसके यहां पर, वो तो फिर आनी नहीं चाहिए, उसकी बात ही नहीं उठनी चाहिए, तो कहम कुण दी, फिर उसका अभाव क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। यश चार्वाको मूढ़ जीवमात्मानम नैव मन्यते, जो चार्वाक मोही मूढ़ प्राणी है वह जीव को आत्मा को नहीं मानता, जीवो नास्ति इति कथयति इत्यर्थ है, क्या कहता है कि जीव है ही नहीं। कीदृशम जीवम, कैसा जीव नहीं है, सचेतनम प्रत्यक्षम सत विद्यमानम, सत यानी विद्यमान, और चेतन प्रत्यक्षम चेतन प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्षम स्वानुभव प्रत्यक्षम इति यावत्, स्वसंवेदन के प्रत्यक्ष और अपने अनुभव के प्रत्यक्ष, ऐसा कहता है वो। स चार्वाक जीवम आत्मानम न जानम, वो चार्वाक जीव आत्मा को न जानते हुए, सन जीवा भावम जीवस्य आत्मन अभावम, जीव का अभाव आत्मा का अभाव, नास्तित्वम अस्तित्व का अभाव, कथम करोति कैसे कर सकता है, केन प्रकारेण विदधाति किस प्रकार से करता है, यो यम न वेत्ति स तस्यावाभम कर्तुम न शक्नोति, जो जिस चीज को जानता ही नहीं है वो उसका अभाव कर ही नहीं सकता। इत्यर्थ ये इसका अर्थ हो गया। अतः युक्त्या चार्वाकम प्रति जीव सद्भावम विभावयति, अब युक्ति के साथ प्रमाण नयाभ्याम युक्ति है, प्रमाण और नयों के माध्यम से चार्वाक जो जीव को नहीं मान रहा है उसको बताते हैं कि जीव नाम की कोई चीज होती जरूर है, तुम सुनो तो सही थोड़ा। जदिनय हवदि जदिनय हवेदि जीवो ताको वेदेदि सुख दुखानी इंद्रिय विषया सव्वे को वा जानदि विशेषेण। बोले कि तुम कहते हो कि जीव नहीं होता, तो ये तो बताओ कि सुख और दुख का अनुभव करने वाला कौन होता है। अगर जीव नहीं होता है तो तुम ये बता दो कि सुख और दुख का अनुभव किसको होता है। और सब्वे भी, और सारे के सारे इंद्रिय विषयों को विशेषण कोवा जान दी, विशेष रूप से कौन जानता है, पृथक पृथक कौन जानता है। देखो आंखों से रूप दिखा, घ्राण से गंध आई, कानों से शब्द सुना, जिह्वा से स्वाद लिया, स्पर्शन से स्पर्श जाना, इन पांचों को किसने जाना। अगर तुम जीव को नहीं मानते तो इन पांचों को जानने वाला कौन है, ये बता दो पहले। क्या सुंदर तरीका है समझाने का। पहले तो क्या कहा कि अगर जीव को तुम नहीं मानते तो ये बताओ कि सुख और दुख किसको होता है, और दूसरा क्या कहा कि पांचों इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं, आंखें चख नहीं सकती, कान सूंघ नहीं सकते, जिह्वा सुन नहीं सकती, और कोई इंद्री किसी दूसरी इंद्री का काम नहीं कर सकती, लेकिन इन पांचों इंद्रियों के विषयों को जानने वाला वो कौन है तुम हमें बता दो। हम तुमसे नहीं कह रहे हैं कि वो कौन है, लेकिन तुमसे पूछ रहे हैं, तुम ही बताओ वो कौन है जो इन पांचों इंद्रियों के विषयों को पृथक पृथक जान लेता है। अथ आत्मन सद्भावे उपपत्ति माह। अब आत्मा के अस्तित्व के विषय में उपपत्ति यानी संगति तर्कणा कहते हैं। संकप्पमो जीवो सुदुःखमयं हवे संकप्पो तंची वेदति जीवो देहे मिलिदो विसवत्। संकल्पमय जीवो, जीव जो होता है वो संकल्पमय होता है, हमेशा उसके अंदर संकल्प जारी रहते हैं। और सुख दुखमय हवि संकल्प, संकल्प किसको कहते हैं? यहाँ पर संकल्प का अर्थ प्रतिज्ञा नहीं है, मैं संकल्प करता हूँ कि तुम्हें ठिकाने लगा के रहूंगा, वो संकल्प नहीं है यहाँ पर। यहाँ संकल्प का मतलब क्या है? सुख दुखमय, सुख और दुख रूप जो अंदर भाव होता है उसका नाम संकल्प है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, ये सब संकल्प विकल्प होते हैं। और तमची वेदति जीव, और उसी का वेदन करता है जीव, बिल्कुल उसी का अनुभव करता रहता है जीव। हर जीव अपनी अपनी छवियों का अनुभव कर रहा है, उस छवि में ठेस पहुंचती है तो सुखी होता है, कभी कभी दुखी होता है। अगर अच्छी बात हो जाए तो फिर उसको सुख होता है, अगर कुछ बुरा लग जाए तो दुख होता है। तो ये सब कौन करता है? जीवोची वेदति, जीव ही उसका वेदन करता है, अनुभव करता है। और सर्वत्र भी, सर्वत्र देह मिले दो, वो जीव जो है शरीर से मिला रहता है। देहे शरीरे मिलितोपि मिश्रीभूतोपि सर्वत्र सर्वांगे, सर्वत्र यानी अपने पूरे शरीर में, सर्व शरीर प्रदेशे तंचिय तदेव सुख दुखम वेत्ति, वही जीव सुख और दुख का अनुभव करता है, वेत्ति जानता है। अब देह मिली तो जीव सर्व कार्याणि करोति तद दर्शेति, देह में मिला हुआ जो जीव है वही सारे काम कर रहा है, इसको दिखलाते हैं। चिंतामणि में हमने एक शंका की थी, शायद एक प्रश्न किया था कि अगर जीव भोजन करता है तो सिद्ध भगवान नहीं करते क्यों, और शरीर भोजन करता है तो मुर्दा नहीं करता क्यों? याद है ये शंका हमने कही थी? अभी चलो आपके सामने शंका है। ये शंका वैसे पंडित पन्नालाल जी ने क्षुल्लक चिदानंद जी से की थी। क्षुल्लक चिदानंद जी ने सोनगढ़ में चातुर्मास किया था, और चातुर्मास करके जब वापस लौटे थे सागर, तब उनका कहना था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। और पंडित पन्नालाल जी ने उनसे ये पूछा था कि महाराज ये बताइए कि भोजन कौन करता है? यदि आप कहो कि शरीर भोजन करता है तो मुर्दे को भोजन करना चाहिए, और यदि कहो कि जीव भोजन करता है तो फिर सिद्ध भगवान को भोजन करना चाहिए, भोजन करता कौन है? ये शंका थी। देखो ऐसी शंका में बिल्कुल बोलती बंद हो जाती ज़्यादा जो चतुराई करना चाहते हैं उनकी, क्या जवाब है इसका? तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शरीर से मिला हुआ जीव सर्व कार्याणि करो तो सब काम कर लेता है, इति निगदति, ये बात कह रहे हैं। देह मिली दो भी जीवो सब कर्माणि कुव्वदे जम्मा तम्मा पयट्टमाणु एयत्तम बुज्जदे दुन्नम। यस्मात् कारणात्, जिस कारण जीव देव मिलितोपि, जीव शरीर युक्त होकर भी, शरीर में मिला होने पर भी, अपि शब्दात् विग्रहगत्यादौ, अपि शब्द से क्या लेना? विग्रहगति आदि में औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर रहितोपि, तीन प्रकार के जो स्थूल शरीर हैं उनसे रहित होकर भी, सर्व कर्माणि सर्वाणि कार्याणि घट पट लकुट मुकुट शकट गृह असी मशि कृषि वाणिज्य गोपाल आदि सर्व कार्याणि तथा ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्माणि कुर्वते करोति विदधाति। माने शरीर वाला होकर भी और विग्रह गति में भी यह जीव इतने सारे काम करता रहता है, खाली नहीं बैठता कभी। क्या क्या करता है? तो बोले घट, कुमार होगा तो घड़ा बनाएगा, पट, बुनकर होगा तो पट यानी वस्त्र बनाएगा, लकुट, सुतार होगा, बड़ई होगा तो लकड़ियों के काम करेगा, फिर मुकुट, सुनार होगा तो फिर मुकुट आदि बनाएगा, शकट, गाड़ी बनाने वाला होगा तो शकट यानी बैलगाड़ी वगैरह बनाएगा। ये सब उपलक्षण है, मतलब ऐसी जितनी चीज़ें हैं वो सब समझ लेना आप। फिर इसके आगे गृहादि, मेसन वगैरह होगा तो फिर घर वगैरह को बनाने का काम करेगा। और असी गृह, फिर उसके बाद असी, असी यानी क्षत्रिय होगा तो तलवार से या हथियारों से रक्षा करने का काम करेगा। मशी यानी स्याही से लिख करके बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, वो काम करने वाला। फिर कृषि, खेती किसानी करेगा। वाणिज्य यानी व्यापार धंधा करेगा। गोपाल आदि मतलब गायों का पालन वगैरह करेगा। सर्व कार्य यानी ये सारे काम कौन करता है? तथा उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाला कौन है? तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीवो सव कम्माणि कुव्वदे, जीव ही ये सारे काम कर रहा है। वो किसी के सहयोग से करे एक बात अलग है, जैसे शरीर के सहयोग से कुछ काम करने पड़ते हैं जीव को, वो बिना शरीर के नहीं कर सकता। तो करता तो जीव है, ठीक है ना। अब वो जो निश्चय नय का वर्णन है उसमें क्या बताया कि अपनी पर्याय का कर्ता अपना द्रव्य होता है, पर द्रव्य, पर द्रव्य की पर्याय नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं होता, लेकिन निमित्त रूप से सहयोग करता अवश्य होता है। इसका निषेध करना सिद्धांत का अपलाप, अपलाप यानी लोप, अथवा कुछ उल्टा सीधा ही प्ररूपण, क्योंकि यह परिणमति स करता। समय सार कलश में कलश आता है कि जो परिणमन करने वाला है वो उस पर्याय का कर्ता होता है। जैसे भात का कर्ता कौन है? चावल का दाना, ठीक है ना। तो वहां पर उपादान को कर्ता माना है और निमित्त को सहकारी कारण माना है। लेकिन बोलचाल की भाषा में व्यवहार में क्या बोलते हैं कि भात उनने बनाया, जिसने भी वहां पर वो सब संयोजन किया हो उसके लिए कहते हैं कि भात उनने बनाया। तो वैसा कहना विरुद्ध नहीं है। देखो निमित्त का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ये निश्चित है कि निमित्त उसकी पर्याय को करने वाला नहीं है, पर्याय को करने वाला वो द्रव्य है जिसमें से वो पर्याय प्रकट हो रही है। अब भात पर्याय किसमें से प्रकट हुई है? चावल में से। इसलिए कर्ता क फिर आगे ता उसके ऊपर रेफ, वो कर्ता, और फिर करता, इसमें अंतर है कि नहीं? तो इन शब्दों के जाल में उलझ कर या उलझा कर किसी को भ्रमित करना अच्छी बात नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये वाक्य ही गलत है। क्यों? वहां पर कर्ता शब्द नहीं है जो समय सार में लिखा हुआ है। क्या कर दिया आपने? करता। र कैसा हो गया? रेफ नहीं रहा, वो र पूरा र बना दिया, कर दिया कबाड़ा। तो ऐसे अर्थ का अनर्थ करने से सबको नुकसान होता है, खुद को नुकसान तो होता ही, वो तो कुछ सालों में अनुभव हो जाता है हर किसी को। जो भी आगम से विरुद्ध रास्ते पर चलता है उसको कुछ वर्षों में ये निश्चित एहसास होता है कि मुझे वो नहीं मिल रहा है जो चाहिए था। पक्की बात है, इसका कोई काट नहीं है। वो भले दूसरों के सामने कुछ भी शो करे, लेकिन अकेले में बैठ कर अगर अपनी आत्मा से पूछे कि आगम में जो बात बताई है वो मुझे मिली है क्या, ईमानदारी से, तो अंदर से एक जवाब आएगा, नो, एन ओ, जबरदस्त, नहीं मिला मुझे कुछ। क्यों नहीं मिला? अब वो चाहे व्यवहार की तरफ अगर एकांतवादी हो जाए तो, या निश्चय का एकांतवादी हो जाए तो, और फिर ऐसे शब्दों का जाल करके अगर घुमाए किसी को, कर्ता अलग चीज होती है और करता अलग चीज होती है। इसके बारे में अगर आपके कोई मित्र हो इस विषय के जानकार तो उनसे आप चर्चा करना कि इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों एक है क्या, तो फिर पता चलेगा। फिर उनसे पूछना कि उसमें तो कर्ता लिखा है समय सार कलश में, यह परिणमति स कर्ता, कर्ता नहीं लिखा, यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत् कर्म, या परिणति क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। पूरा श्लोक इस प्रकार है। तो ऐसा अगर अर्थ का अनर्थ करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। यहां पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि जीव ये सारे काम करता है, सारे काम करता है, कुछ शरीर के सहयोग से करता है, कुछ अपने भावों से कर लेता है, कर्मों का बंध अपने भावों से कर लेता है, और फिर ये सब उठा पटक जो है, कौन सी उठा पटक, देखो ये असी मसी आदि घट पट, क्या अनुप्रास कितना सुंदर बनाया, देखो ट ट ट ट ट ट कितने सारे निकाले, कैसे शब्द छांटे होंगे उन्होंने, घट पट लकुट मुकुट शकट, बहुत मतलब साहित्य में भी अच्छे विद्वान रहे अपने जैनाचार्य। अभी तो आज अपन दृष्टांत भी देते हैं तो फिर कहीं से कहीं उल्टा सीधा दृष्टांत फिट कर देते हैं। जैसे सम्यक दर्शन का एक दृष्टांत दिया जाता है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है उसको पता न चले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या दृष्टांत है उसका? तो बोले कि माँ अगर बच्चे को जन्म देती है तो फिर उसको पता न चले ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कहाँ सम्यक दर्शन और कहाँ माँ, ये एकदम विषम दृष्टांत है। पर सुनने वाला कैसे समझेगा, क्योंकि सुनने वाला तो एकदम ही अंगूठा छाप है, ये तो दो चार चीजें पढ़ करके सुना रहा है, लेकिन जो सुन रहा है उसको तो कुछ भी नहीं मालूम। तो वो सोचता है कि आ क्या बढ़िया दृष्टांत दिया, बिल्कुल सही बात है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको तो बिल्कुल पता रहता है कि बच्चे, वो पूछती नहीं किसी से कि मेरा बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, माँ को पूछना नहीं पड़ता, उसको खुद स्वयं उसकी वेदना होती है उसको मालूम पड़ जाता है। तो इसी प्रकार सम्यक दर्शन जिस जीव को प्राप्त होता है उसको नियम से मालूम होता है कि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। अब जबकि शास्त्रों में ये बताया कि सम्यक दर्शन सामान्य ज्ञान का विषय है ही नहीं। अब चाहे पंडित राजमल पांडे जी ने जो पंचाध्यायी लिखी हो या फिर और भी किसी विद्वान के ग्रंथ हो, आचार्य प्रणीत ग्रंथ, आचार्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ लिखा, राजमल पांडे जी ने एक श्लोक लिखा सम्यक्तम वस्तुतः सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरम, केवल ज्ञान का विषय है, और यहाँ इनको पता चल गया कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, जबकि वहां लिखा है कि केवल ज्ञान को पता चलता है कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि। गोचरम स्वावधि स्वांत मनः पर्यये अंतः पर्यये ज्ञानयोर्द्वयो, फिर उसमें लिखा है कि अथवा सुअवधि या मनः पर्यये ज्ञान, ये जिनके पास हो तो वो भी पहचान सकते हैं कि कौन जीव सम्यक दृष्टि है। लेकिन यहां कैसे पता चल गया मति और श्रुति ज्ञान के साथ कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? तो ये विषम दृष्टांत हो गया। और फिर राम को पता नहीं था कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, जबकि गारंटीड थे सम्यक दृष्टि हूं, बलभद्र मिथ्या दृष्टि नहीं होते, राम सम्यक दृष्टि थे, मतलब सुनिश्चित आगम प्रमाण है कि राम सम्यक दृष्टि ही थे। लेकिन फिर भी उनने भगवान से क्या पूछा, देशभूषण कुलभूषण मुनिराजों से, कि हे भगवान आपने जो उपदेशों में भव्य अभव्य जीवों की चर्चा की है तो मैं कौन हूं, क्या मैं भव्य हूं, ये प्रश्न किया। जबकि सम्यक दर्शन भव्य को ही होता है और सम्यक दृष्टि को पता होता है कि सम्यक दृष्टि हूं, तो उसको ये नहीं पता होगा कि मैं भव्य हूं। जिसको ये पता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं उसको ये पता नहीं होगा कि मैं भव्य हूं, उसको ये शंका उठेगी क्या, वो भगवान से पूछेगा कि भगवान मैं भव्य हूं क्या? अरे जिसको ये मालूम है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो फिर भव्यत्व की तो शंका पहले ही खत्म हो गई। क्योंकि अभव्य जीव को ऐसा हो सकता है जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, तो ये दृष्टांत भी विषम दृष्टांत है। ये बात स्पष्ट है कि सम्यक दृष्टि को पता हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा कोई नियम नहीं है। अब कोई रिद्धिधारी मुनि है उनको पता हो कि मैं भावलिंगी हूं, ये एक अलग बात है, लेकिन सबको पता होने का कोई भी नियम नहीं बनता। तम्मा इसलिए पयट्ट माणु एयत्तम दुण्णम बुझ्यते तस्मात् कारणाम कार्यादिषु प्रवर्तमान जन, उन कार्यादिक में प्रवृत्ति करने वाला जो मनुष्य है वो द्वयोः जीव शरीरयोः एकत्वं बुद्धिते, जीव और शरीर में जो अभी वर्तमान में एकता है उसको समझ लेता है। अतः शरीर युक्तोपि अतः शरीर युक्तत्वेपि जीवस्य दर्शनादिक क्रियां व्यनक्ति, अब शरीर युक्त होने पर भी जीव के पास दर्शन आदि की क्रियाएं हैं उसको व्यक्त करते हैं, वो आगे करेंगे। आज इतना ही, ठीक है।